7274900.
Chandni
Banquet Hall.
Intelligent choice, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca.
यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल होलसेल रेट पाकिस्तान इंडिया और मिडल ईस्ट एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस अफोर्डेबल इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours 905-272-2300
लीजिए साहब एक मुलाकात की तरफ लेके चलती हूँ। आपको बताया कि कल के तूफान ने बड़ा अंत किया। मैं तो कल भी ये पैगाम दिया था गवर्नमेंट को, भाई आप देखिए हमारे मुल्कों में आबादी लोग टपक रहे हैं, बसों में से टपक रहे हैं, वैनों में से टपक रहे हैं, मगर उसके बावजूद हम जी रहे हैं। बारिशें होती हैं तो छतें भी पक्की नहीं, कच्ची छतों के बीच में हम जी रहे हैं, और कल की बारिश ने तो बड़ी तबाही मचाई है। मैं आज इंश्योरेंस के लिहाज से देख रही थी, आप इमेजिन कीजिए ड्रेक का घर पता कहाँ है, उसमें ब्राइडल पाथ के ऊपर, और ड्रेक के घर में भी पानी आ गया, कर लो गल, हाय मैं मर जावा, ड्रेक के घर में भी पानी आ गया। एक और चीज जो मैं देख रही थी कि इंश्योरेंस कंपनियों का जो अगर तखमीना लगाया जाए कि कितना नुकसान अब तो खैर चीजें ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल है, बे इंतहा इंश्योरेंस को ये तूफान कॉस्ट किया है। आइए साहब मैं लेकर के चलती हूँ आपको ऐसी चीज की तरफ जो हम औरतों के लिए बाज़ औक़ात कमजोरी भी होता है, हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ भी होता है। हम अपने छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए गिफ्ट जब लेते हैं तो ऐसा गिफ्ट जो हमेशा रहने वाला हो। मिसाल के तौर पे आई जस्ट थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई ऑलवेज लुक एट माई ओन रिफ्लेक्शन नाउ, वो कि FSC हुई तो एक चीज मिली, फिर बच्चा आगे पढ़ता है उसको गिफ्ट्स मिलते चले जाते हैं और ये गिफ्ट हमेशा आपके साथ, और सोना तो कभी भी पुराना नहीं होता। अगर सोने की रिपेयर चाहिए रूबी ज्वेलर्स मॉल्टन में, अगर आपने नया जेवर खरीदना तो रूबी ज्वेलर्स मॉल्टन में इकराम भाई यहां पर मौजूद होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूं आप प्रोग्राम साज आवाज का हवाला दें, आपने दुल्हा के लिए अगर आपने लेना है, क्योंकि हमारे दुल्हा बाज़ुकत क्योंकि सोने की चीज नहीं पहनते तो प्लैटिनम रिंग्स एंड डायमंड्स। अच्छा डायमंड की जब हम बात करती हूँ, रूबी ज्वेलर्स की याद है पाकिस्तान में लिबर्टी में भी हुआ था रूबी ज्वेलर्स, इनकी जो इनकी स्पेशलिटी है वो जड़ाऊ जेवरात है, जिसमें रूबीज हैं, जिसमें फिरोजा है, जिसमें यानी हर तरह के जेवरात जड़ाऊ जेवरात। इकराम भाई मेरे साथ, इकराम भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
वालेकुम सलाम भाजी।
इकराम भाई जेवरात के बारे में हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, और सोना हमेशा से एक कीमती धात, एक एसेट के तौर पर माना जाता है कि ख्वातीन अपनी हिफाजत भी इसको समझती हैं। मुझे आप बताइएगा कि आज आउंस की कीमत क्या है, और अगर आपसे किसी ने अपना सोना बेचना है या अपने सोने को पॉलिश करना चाहते हैं या किसी किस्म की कोई रिपेयर की जरूरत है तो हाउ कैन दे कॉन्टेक्ट यू?
अजी आज की गोल्ड जो ऊपर जा रहा है, एवरी डे ऊपर गोल्ड जा रहा है, आप देखेंगे तो 2470 गोल्ड की प्राइस US में आ गई है, तो एवरी डे ऊपर ही गोल्ड जा रहा है। तो मैं तो सबको यही कहूंगा کہ خاص لیڈیز کو ان کا یہ سیونگ ان کے لیے بہت اچھی ہے، ان کی اپنی اون سیونگ ہوتی ہے.
روبی جیولرز پہ آپ جائیے، زیور خریدنا ہے آپ نے، زیور پالش کروانا ہے آپ نے، زیور کی چین ٹوٹ گئی ریپیئر کروانا ہے، تو بیشتر اس کے کہ وہ کنڈا گواج جائے یا وہ ہک گواج جائے، وہ تو پہلے لے جاؤ تسی روبی جیولرز سے.
کہندے چین گواچن تو پہلے لے جاؤ.
میرے نال میں تو دسیا نا راہ پہ جانے واہ پہ جانے، اب میں ہڈ بیتی دسنی ہے. وہ چین دا ہک ٹوٹ گیا، اونوں سانبھی رکھیا، اس تو بعد جدو کڈیا تے پتہ لگا چین سی ہک گواچ گیا سی، یا ایک وہ میرا پینڈنٹ تھا. اب آپ سوچیے 1902 میں میں نے کب پڑا ہوگا جب امی جان نے وہ آیت الکرسی دی تھی اور چین دی تھی، اور ہن کی ہویا وہ جڑا پینڈنٹ نو چینج پان والا سی وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے سنبھالا مگر وہ بھی نظر سے نظر نہیں آ رہا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کبھی چین میں کوئی چیز ہو جائے، ریپیئر ہو، تو بر وقت کرا دیجیے گا، روبی جیولرز سے لے کے جائیں. اکرام بھائی، ڈائمنڈ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈائمنڈ پہ آف کورس ڈونٹ گو ٹو مین اسٹریم ٹو بائی ڈائمنڈز، آرٹیفیشیل ڈائمنڈز بھی آ گئے ہیں، مگر ڈائمنڈ کے کٹ جو ہے وہ اصل میں، اگر آپ ایکچوئل ڈائمنڈ جو مائنز میں سے نکلتا ہے وہ چمکتا چمکتا نہیں، دس از اے کٹ وچ میکس ڈائمنڈ ڈائمنڈ. تھوڑا ہیرے کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ہیرا خریدنے کے لیے، ہمیں تو ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے اور ہر چمکتی چیز مجھے ہیرا لگتی ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائمنڈ ہے نیچرل ڈائمنڈ ہے وہ تو ڈائمنڈ ہے، جو لیب گرو آ گیا ہے وہ سیم اس کی اس سے بھی زیادہ شائننگ، اس سے بھی زیادہ اسپارک ہے جو لیب ڈائمنڈ ہے. زیادہ جو ہے لڑکے لڑکیاں وہ لیب ڈائمنڈ لے رہے ہیں، بڑا 2 کیرٹ 3 کیرٹ 4 کیرٹ تک وہ لے رہے ہیں، کہ وہ کافی پرائس میں، جیسے 2 کیرٹ کا نیچرل ڈائمنڈ ہے 2 کیرٹ کا لیں گے وہ اچھے والا جو بی بی ایس ہے وہ 40,000 کے پاس آئے گا. تو جو آپ دوسرا لیں گے لیب گرو لیں گے وہ آپ کو 4,000 to 5,000 تک مل جائے گا.
ہائے میں مر جاؤں، 35,000 کا فرق ہے.
ہاں جی، تسی دیکھو بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، پر لگے گا سیم، کوئی بھی دیکھنے میں کوئی بھی فرق نہیں.
میں ایک اپنی ایک احتیاط آپ سے پوچھتی ہوں، ظاہر ہے بینگ یو آر ان دا گولڈ بزنس سنس ایور، مجھے یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات جس بندے کو پہچان نہیں وہ تو زرکون کو بھی سونا سمجھ دیتا ہے، کیونکہ ڈائمنڈ سمجھ دیتا ہے کہ چمک ہی بہت آ رہی ہوتی ہے. ہاؤ کین سم باڈی فائنڈ؟
میں باجی آپ کو بتاتا ہوں، کوئی نا لیڈیز تھی وہ ہمارے اسٹور پہ آئی لاسٹ منتھ، ان کے پاس نا کوئی ایک کڑا تھا، بہت ہیوی کڑا تھا، تقریباً 8-9 تولے کا کڑا تھا. تو وہ کڑا 8-9 تولے کا تھا، پورا گولڈ کی گولڈ لگتا تھا، پورا گولڈ. میں نے بھی دیکھا وہ لے کے آئے، انہوں نے وہ تقریباً کوئی 30-40 سال سے ان کے پاس تھا، مجھے نہیں پتا کہاں سے لیا انہوں نے، کہ 30-40 سال سے ان کے پاس تھا. تو وہ مجھے لے کے آئے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ کڑا ہم نے شیئر کرنا ہے تو ہمیں نا کیش چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ویٹ کیا، ویٹ کر کے میں نے پرائس بنا دی. جب میں نے پرائس بنا دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ پرائس کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چیک کر لیتا ہوں. ایک دفعہ چیک کیا تو وہ گولڈ تھا، گولڈ پلیٹنگ تھی.
گولڈ نہیں تھا،
گولڈ پلیٹنگ تھی. میں آپ پریشان ہو گیا، لگتا ہی گولڈ تھا.
مطلب چونا لگ جلا سی
باجی. میں انہوں نے کہندا سی کہ پیسے لے لو جننے بھی میں بنائے، کہتے نہیں تھوڑے جی ہور دو. میں کہ پھر میں چیک کر لینا گولڈ، گولڈ چیک کر کے میں تم دیکھ رہا جن کو ہور زیادہ میکسیمم دے سکتا وا کہ پیورٹی کنی. جب میں نے چیک کیا تو وہ آرٹیفیشل، تو اوپر گولڈ پلیٹڈ ہوئی. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا کہ یہ گولڈ نہیں ہے. کہتے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اتنے پیسے لے لو. میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو میں نے دیکھا نہیں، ابھی میں نے جب چیک کیا تو یہ گولڈ نہیں ہے. تو وہ بلیو کرو اتنا پریشان ہو گیا.
آپ کے پاس ایک بلیک کلر کا سٹون ہوتا ہے،
بات تو پوری سن لو، بات تو سنتے نہیں. मैंने वो चेक किया ना, ब्लैक कलर का स्टोन था, उसके ऊपर वो थोड़ा सा टेस्ट किया तो वो गोल्ड नहीं निकला। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो मैंने 40 साल से साम के रखा है। कि मैंने कहा कि मैंने पूछा उनको, मैंने कहा बाजी कहाँ से दिया आपने ये वाला? कहते ये तो मेरी शादी पे मेरी नानी ने दिया था।
और नानी अम्मी को भी पता नहीं होगा, नानी अब गलत तो नहीं?
नानी को भी कहीं से मिला होगा, कहीं ना कहीं से। तो मेरा कहने का मकसद, नहीं पता चलता जितनी देर चेक करो। देखो उनको उनको ये था कि मेरी वैल्यू है। जब वो कहते 40 साल पहले गोल्ड की प्राइस जो थी 15-20 रुपये, पता नहीं कितना, 200-300, मुझे नहीं पता कितना कुछ दर रही, कि इतने का वैल्यू था। मैंने शाम के इसलिए रखा कि आज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि कम से कम 10 तोले का होगा, 10,000 प्राइस थी उसकी।
नहीं मैं मर जाऊं।
तो मतलब वो ये देखो कि उनकी सोच के उन्होंने रखा हुआ कि ये वैल्यू, कि ये देखो कि रियल लिया होता, रियल होता तो आज उसकी 10,000 वैल्यू होती। उनको जरूरत थी पैसों की, कि गोल्ड जो है ना मुश्किल टाइम पे काम आता है, वो सबको लेना चाहिए। जब भी लेंगे आपको महंगा लगेगा, पर जब ले लिया फिर भी महंगा लगेगा।
नंबर दें आपके पास आए तो, मेरे तो लिसनर्स आई लव देम। एयरपोर्ट रोड पे मस्जिद है, नॉर्थ ऑफ डेरी, डेरी एंड एयरपोर्ट के इंटरसेक्शन पे रूबी ज्वेलर्स। सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, यू मस्ट कॉन्टेक्ट देम। आई लव माई लिसनर्स, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फैसिलिटेट देम कि अगर वो किसी के पास जाए, क्योंकि यू नो कहते दिखांदे लोग की सज्जा पासा ने, बेचते लोग की खब्बा पासा ने, तो प्लीज गिव देम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस। क्योंकि बड़े शरीफ लोग माजिद भाई जैसे भी होंगे जो जिरा ही नहीं करते, बड़े मीन भी होंगे ने मेरे वर्गे जेडी बहुत जिरा करते।
नहीं बाजी तुसी भी नहीं करते।
आई लव यू। बहुत प्यारे मेरे भाई इकराम भाई, वंडरफुल मैन, रूबी ज्वेलर्स के नाम से एयरपोर्ट रोड पे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जेवर की खरीदारी के लिए एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आपने बेचना है, खरीदना है, दुल्हे के लिए आप प्लैटिनम रिंग लेना चाहते हैं, रूबी ज्वेलर्स। जी इकराम भाई एड्रेस दीजिए।
हमारा एड्रेस है मॉल्टन में, एयरपोर्ट रोड एंड डेरी रोड, 7086 एयरपोर्ट रोड, मिसेस सागा भी कह सकते, मॉल्टन भी सेम ही है। तो हमारा फोन नंबर है 9056776888। फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, 9056776888।
रूबी ज्वेलर्स का आपको नंबर दिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहुंचे। ग्राम भाई थैंक यू वेरी मच।
ओके,
ये जो गड़बड़ है ना, ये लॉजिक कर लो बात। पहले लोग एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट कर बैठते हैं, फिर जिसके साथ इन्वेस्ट किया होता है अगर वो पैसे लेके भाग जाता है तो फिर और ये साहब बैंकॉक में अजीब ही मामला हो गया। अब मामला क्या हुआ, ये बैंकॉक में थाईलैंड में ना 6 दोस्त एक होटल में गए। देखिए खबर, माइक भी ऑन कर लेते हो
जी, देख लेंगे।
अच्छा, थाईलैंड में ना 6 लोग एक होटल में गए, उसकी ब्रांचेस यहाँ कनाडा में भी है, वो नहीं हयात होटल्स, तो वहां पे गए, लग्जरी जगह थी, उन्होंने जनाब 5 कमरे बुक कराए। अब आप कहेंगे 6 लोग थे, 5 कमरे, हाँ उसमें एक मियां बीवी भी थे ना, एक मियां बीवी भी थे, वो एक ही कमरे में ठहरे, तो उन्होंने 6 कमरे बुक कराए, 5 कमरे बुक कराए, ये 6 लोग गए। उसके बाद ये वहां पे इकट्ठे हुए, 3-4 दिन रहे, उन्होंने सैटरडे संडे को उन्होंने वापस चले जाना था, मगर साहब सैटरडे को इन्होंने जिस दिन वापस जाना था उस दिन एक कमरे में उनके लिए एक खातून वहां पे मौजूद थी, उन्होंने चाय मंगवाई, चाय सर्व की, चाय उनका बैरा 6-7 लोगों के लिए जो चाय था वो लेके कमरे में चला गया। जो बैरा है बाद में उसने बताया, यानी जो वेटर था उसने बाद में बताया कि शी वाज लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड आउट लग रही थी। खाना भी वहां पे सर्व कर दिया मगर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। आहिस्ता सर्वेलेंस होती है ना, तो पता चला कि बाकी जो 5 लोग 6 लोग हैं, 5 लोग एक मियां बीवी और 4 बाकी भी इस खातून के कमरे में गए। अच्छा, हुआ क्या कि जिस दिन उन्होंने मूव करना था उससे एक दिन वो नहीं मूव किया, अगले दिन होटल वालों को तशवीश हुई, उन्होंने जब इनके कमरे सारों के लॉक थे, जब इनके कमरे लॉक थे, जब उन्होंने उन कमरों को खोला तो एक कमरे के बीच में छह के छह मरे पड़े थे। एक नहीं दो नहीं, छह के छह इकट्ठे ही मरे पड़े थे। जनाब चाय माय पी रहे थे, उधर कहीं चाय खाना पीना भी लगा हुआ था, खाने को तो उन्होंने टच ही नहीं किया, पैसे ही जाया किए हैं काम का, मर गए। अलबत्ता चाय की इन्होंने कप पिए। अब जनाब कमरा अंदर से लॉक था, हैं? कोई बाहर से आया भी नहीं, कोई गोली भी नहीं हुई, कोई तशद्दुद भी नहीं लगा, इन्होंने तोड़ ताड़ के उनको निकाला। अब मुहिमा ये था कि हुआ कि थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस मामला बहुत एस्केलेट कर गया, वो भी वो इस मामले को देखने के लिए पहुंचे। पुलिस ने फिर मुस्तैदी शो करना शुरू कर दी। पता क्या चला कि उन सारों ने चाय में जहर पी लिया, जहर भी कौन सा, साइनाइड वाला। अब जब मजीद तफसील में गए तो पता चला कि वो जो छह लोग थे, पांच कमरों में मुंतकिल हुए थे, उनमें से एक औरत ने ना इन बाकी पांच लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लिया, 2,80,000 रुपए के डॉलर के करीब ये रुपया पैसा बनता था थाईलैंड की रकम में। उसके बाद ये लोग उससे शायद पैसा अपना मांग रहे होंगे, और उस औरत ने फिर जी जहर शहर डाल के आप भी चाय पी ली, आप भी मर गई, डबो बैठी होगी ना। सैड कहानी है ना, मुझे भी बड़ी सैड लगी। हाँ ना, सच्ची से ये बड़ी कमाल की कहानी। ये तो खबर मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। आमिर से कहती हूँ, आमिर टॉप ऑफ द आवर सुनाना है या क्या गाना सुनाना है?
कलाम लगाएंगे। कौन
कलाम? इतने सीरियस क्यों?
अच्छा मैं सीरियस हो जाता हूँ, सॉरी, मैं खबरें सुन रहा था तो सीरियस हो जाते ना खबरें के बाद।
अब देखो छह लोग गए, छह के छह मर गए वहीं पे होटल में।
हाँ लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट वाली डील है कि जिसने इन्वेस्टमेंट किए तो
वो भी मर गए। इसलिए ना कि कनाडा में भी लोग बाजुकत इन्वेस्ट कर लेते हैं तो डूब डुबा गए होंगे पैसे, तो उसने सोचा होगा अगर मैं इनको मार के बाहर निकल भी गई तो मुझे बाहर वैसे पुलिस ने धर लेना। कहानी बंद करो। और छह के छह कप्स में से साइनाइड मिलाया हुआ था। साइनाइड इज द मोस्ट डेंजरस पॉइजन जो आप दे सकते हैं किसी को या खा सकते हैं,
क्योंकि इसमें सिक्स जो है वो वियतनामी, कुछ वियतनामी हैं और अमेरिकन हैं।
हाँ अमेरिकन भी है उसमें, अमेरिकन भी है, क्योंकि अब सीआईए इन्वॉल्व हो गई ना, सीआईए भी इन्वॉल्व हो गई। वो कहते जी हूं कर लो जो करना है
कर दो, लेकिन वो भारत वो इन्वेस्टमेंट जो बात करें वो टोटल अमाउंट जो कहते हैं कि कैनेडियन डॉलर वो 10 मिलियन भात है जो इन्वेस्टमेंट करने वाले,
2,80,000 डॉलर,
381 प्रिसाइज 381 कैनेडियन डॉलर।
अच्छा टू दी अच्छा देखो ना तो आप कैनेडियन में बात करें, मैं अमेरिकन में बात कर रही
हूँ, हम कैनेडा में रहते हैं।
एनीवेज ये थी एक सूरत हाल। गेट रेडी एंड ऑफ कोर्स मुझे आमिर मुझे इस खबर की बड़ा दुख है आज का, जो मलीर के मेमन गोट। आप यकीन करो मैंने जब इस खबर को पढ़ा ना, खुदा की कसम गलत नहीं कहती, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा कि मेरा बच्चा सड़क के ऊपर दौड़ा फिर रहा है और उस बेवकूफ को क्यों नहीं पता चला कि मेन होल खुला है। और मजे की बात है, एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, पांच बच्चे मेन होल में गिर जाए, हाउ इट इज पॉसिबल? यू नो कराची
पर ये मलीर का एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास भी लोग वहां रहते हैं। बच्चे ये रात में खेल रहे होंगे, या दो तरीके होते हैं तो कराची में, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली,
या बारिश हुई
है तो वो होल नजर नहीं आए, बच्चे पानी में खेल रहे होंगे
और वो पता गंदा होल है, यानी
गटर का होल है, और उसमें ये नया वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई दफा इवन बारिशों में ये होल भरते थे मोटरसाइकिल्स वाले, फैमिली के साथ अक्सर बच्चे वो गिर जाते थे, फीमेल्स गिर जाती हैं इसमें, मेल्स भी गिर जाते हैं, खासकर जो बाइक, आपको पता है बहुत ज्यादा लोग बाइक चलाते हैं। लेकिन वो जो समी साहब कहते हैं कि वो अफीमची उठा के ले जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई हल नहीं है। एक साहब थे, उनका नाम फिर लूंगा तो कहेंगे यार पीटीआई की लोग रहे, उन्होंने ये स्कीम शुरू की थी आलमगीर साहब ने फिक्स इट के नाम से, कि तमाम होल्स जो है वो कराची के फिक्स किए जाएं। लेकिन आप, मुझे लगता है कि कैपेसिटी का इतना बड़ा इश्यू है अल्फाफा, हमने आबादी बहुत बढ़ा ली और वहां पर रिसोर्सेज बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
रिसोर्सेज की बहुत, मैं आपको और रिसोर्सेज की बात नहीं कि आपका ऊपर से लेके नीचे तक हर इंसान परसेंटेज पे काम कर रहा है। आमिर मैं बड़ी माजरत के साथ और बड़ी माफी के साथ ये बात कर रही हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड वी ब्रॉट दिस प्रॉब्लम इन कैनेडा एज़ वेल। हम यहां आके भी میری ایک نا بچے سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس نے نا ان بچوں نے نا پاکستانی بچے ہیں انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے آئی وونٹ نیم دیم تو انہوں نے کاروبار شروع کیا انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے یہ ونڈو کلیننگ کا
جی
تو وہ کہتے نو وی ڈیل ود اونلی کینیڈینز وی ڈونٹ ڈیل ود پاکستانی تو میں بچے پاکستانی بچے میں نے کہا واٹ ہیپن انہوں نے کہا بیکاز یو نو دا کینیڈینز وی ورک اینڈ دے پے اس گڈ اماؤنٹ اینڈ وی ڈیلیور دا ورک ویئر ایز وین وی گو ٹو دا ہم ایک ہی سڑک کے اوپر جب اپنے پمفلٹ دے رہے ہوتے ہیں وین وی گو ٹو اے پاکستانی دے تھنک دیٹ یو نو اٹ از ون ڈالر ٹو ڈالر میں ہم کلین کریں گے ہم سوپ لگاتے ہیں ہم ٹریول کرتے ہیں تو اس نے ایکسپلین کیا تو میں نے اسی طرح میں نے کہا دیکھو بیٹا تم بھی جب کسی پاکستانی کے پاس جاتے ہوگے تو آپ بھی اپنی جاب میں گڑبڑ کرتے ضرور ہوں گے ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں سے تعلیم ہے مین اسٹریم کے لوگ جو ہے نا وہ اپنا کام کرتے ہیں تو آپ وہ اپنے لحاظ سے کرتے ہیں تو اینی ویز دس از واٹ مائی کنسرن ہم وہ پرابلمز یہاں بھی لے کے
یہاں بھی آ گئے جو ہم اس دن بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں ریجوے پلازا کی آپ فرائیڈے نائٹ کو یہ صبح آئے آپ سیٹرڈے کو یا سنڈے کو آپ کو
میں ایک دفعہ گئی تھی
روڈ پر ملے گا
آئی وینٹ دیئر وانس اٹ ٹک می اینڈ مائی سن 50 منٹس 55 منٹس ٹو جسٹ گیٹ آؤٹ آف دا اینڈ آئی تھاٹ
میں تو واکنگ ڈسٹینس ہے اور مجھے مہینوں ہو جاتے
ہیں اور ہم گئے بھی کیوں تھے وہ جو سمک ایک ریسٹورینٹ ہے عراقیئنز نے مجھے کہا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو ایٹ ریئل عراقی فوڈ گو ٹو سمک بیکاز انفارچونیٹلی عامر ہم نے ریسٹورینٹس کی اگر بات کی ہے نا تو میرا ایک نیفیو ہے میری بہن کا بیٹا اس کی وائف از ٹرکش یہ بڑی سننے والی بات ہے اس کی وائف ٹرکش ہے ایک بچی جو پلی بڑی اس کا ٹرکش ٹیسٹ اپنا ہے بڑا مزے کا کھانا جو بھی وہ بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ کھاتے تھے تو ان کے دوستوں نے نا ان سے کہا کہ یار ہم تو ٹرکش کھانا بڑا مزے کا ہے تو اس نے احمد نے کہا کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک ہم باہری لڑکے تھے تو میں تمہیں وہ ایک ٹرکش ریسٹورینٹ میں لے کے چلا گیا تو وہ جو پاکستانی ان کے ساتھ ان کے دوست تھے انہوں نے کہا یار اس کا ٹیسٹ ٹرکش نہیں ہے یہ مطلب کیا عجیب سا ٹیسٹ ہے تو وہ انہوں نے جن ریسٹورینٹس کا نام لیا تو وہ ایکچولی ٹرکش نہیں ہے وہ سے عارفہ مظفر نے یا آپ نے وہ ریسٹورینٹ شروع کر لیا
ٹھیک ہے
تو وہ اس کا فلیور چیک کرنے کے بعد اس میں وہ مسالے یعنی لوگوں کے آپ نے فلیورز کو ہی گڑبڑ کر دینا آپ نے اگر ٹرکش ریسٹورینٹ شروع کیا تو کم سے کم امپلائیز تو ٹرکش رکھ لو
یا آپ ریسیپی لے آئیں
آپ ریسیپی لے کے آئیں وہاں سے ہر چیز کو آپ گڑبڑ نہ کریں تو وہی وہ ہنس رہا تھا کہ جتنے ریسٹورینٹس ایکس وائی زیڈ نے کھول لیے ٹرکش کے نام پہ دے جسٹ لک ایٹ دا ریسیپی اینڈ یو ٹیوب زندہ باد اس میں وہ اپنی ریسیپیز شامل کرتے چلے جا رہے ہیں جس پہ آپ نے ٹرکش فلیور تو ونس آئی وینٹ دیئر ان ریجوے پلازا وہ سمک ایک ریسٹورینٹ ہے پر اس کے باہر اتنی لمبی لائن تھی
بالکل صحیح کہہ رہی ہے میں جو بات کر رہا ہوں آپ پر جو ابھی یہ بات ہوئی تھی گٹر کچھ نہیں ہے کیپیسٹی کا ایشو یہاں کیوں بن رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں کراچی کی بات کروں یہاں انہوں نے بنز رکھے ہوئے ٹریش سارے پورے پلازا میں بنز ہیں اب اس کی کیپیسٹی
پیپل ڈونٹ یوز
نہیں نہیں آپ کیپیسٹی ایشو سمجھے اس میں 500 لوگوں کا گاربیج آئے گا ایگزامپل آتا 1000 ہے کیا ہوگا
باہر گرے گا
یہ پاکستان کا ایشو
اینڈ یو نو واٹ اٹ ہیپنز ان دا ہاسپٹل بھی ہیئر ان کینیڈا
میں آپ سے یہی
نمبر ون نمبر ٹو آپ ہسپتال میں مجھے یاد ہے جس رات میں اور مظفر ہاسپٹل گئے اٹ واز 16th of March اور آپ یقین کرو گاربیج اگل رہا تھا ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں سے کیونکہ لوگ زیادہ تھے آپ کو پتا ہے ہسپتالوں میں لائن اپ کیوں زیادہ ہے کہ آپ کا جب سینسس ہوتا ہے تو گورنمنٹ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کی بیسمنٹ میں کتنے لوگ ہیں ٹیلنٹس کتنے ہیں پیپل ڈونٹ ٹیل نمبرز وی ڈونٹ ٹیل نمبرز جس کی وجہ سے ہاسپٹلز کا لائن اپ زیادہ ہوتا چلا جاتا اینی ویز بات تو عامر نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی جی عامر
اچھا جی ایک اور کلام پروگرام میں شامل کر لیتے
ہیں
اور پھر انٹرویو ہے وہ ہم شامل کریں گے آپ سے اس کلام کے بعد ریاضت علی آزاد پریزیڈنٹ ہیں
ریاست علی آزاد
ریاست ایس زیڈ اور ایس میں میرا معذرت ریاست علی خان پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ان کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے آپ کو مظفر صاحبہ سے ہم پروگرام میں شامل کریں گے تقریباً 5:35 پر अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 416-620-1778 हमारा नंबर है, और अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं जहां आपको सही सुनाई मेरी खूबसूरत सुरीली आवाज नहीं दे रही, तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 पर डायल करके आप हमें क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुन सकते हैं। तो जनाब ऐसे करते हैं प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में, और फिर वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778।
टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी ट्रेवल इंश्योरेंस हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना मैंना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे फा मुजफ्फर आपके साथ हैं। आई डेफिनेटली थैंक आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट एट द मोमेंट, बार एसोसिएशन इस्लामाबाद, बार एसोसिएशन के सदर जनाब रियासत अली आजाद साहब हमारे साथ हैं। इन वकला ने बहुत काम भी किया है, बहुत से लोगों की मदद भी की है। यकीनन कानून की जुबान कानूनी जानते हैं और हम कोई कानूनी रिपोर्टिंग तो हम करते नहीं, हमारा तो काम है आप लोगों के सवालात के जवाब लेना। जनाब रियासत अली आजाद साहब, इट्स वेरी लेट इन पाकिस्तान, आई थैंक हिम वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
इट इज वेरी लेट इन पाकिस्तान। सर मैं आपसे क्विकली क्विक टाइम आपका लूंगी। एक तो ये कि जो रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को जो फैसला आया था वकला ने, जो हमारे जजेस ने फैसला दिया था और 11 में से 13 जजेस ने कहा कि ईसीपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, उसकी रूह से फौरी तौर पर हमारे वजीर कानून सामने आते हैं तो मुझे तो लगता है जैसे अदलिया और सिस्टम जो है वो मद्दे मुकाबल आ गया है। और अब अदलिया को मतलब आप पहले तो उसके बारे में बता दें और इनकी अक्सरियत जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी हुक्मरान इत्तेहाद जमात 224 से कम होकर 204 पे चला जाएगा। तो व्हाट डू यू सी इन द नियरेस्ट फ्यूचर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो एक थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, मैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हूं। आपके सवाल देखे, 19 मई का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था और पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, ये दोनों सुन्नी धात काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसमें उन्होंने कहा कि जी चूंकि आपका 18 घंटे पहले इलेक्शन से उनका बल्ले का निशान चला गया, तो जब उन्होंने जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने सर्टिफिकेट जमा करवाया कि हमारा तो तल्लक जो है, और साथ सर्टिफिकेट दिए कि हमारा तल्लक पीटीआई से है, तो उन्होंने कहा जी चूंकि आपका आपकी पार्टी नहीं रही तो आप वो आजाद उम्मीदवार है, तो आजाद उम्मीदवार के वाले से उन्होंने सबने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था कि जी आपने 3 दिन के अंदर किसी पार्लियामानी पार्टी को ज्वाइन करना है, तो उन्होंने सुन्नी तात कौंसिल को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इन दोनों फैसलों को सुन्नी तात कौंसिल ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन द लाइट ऑफ जजमेंट, 200 केस है सुप्रीम कोर्ट की, बड़ी रिनाउंड जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया था कि इफ द फाउंडेशन ऑफ एनी बिल्डिंग दैट इज इलीगल एंड सुपर स्ट्रक्चर विच इज मेड ओवर दैट बिल्डिंग दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड इलीगल। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सेट असाइड कर दिया और पिशावर हाई कोर्ट का फैसला भी सेट असाइड कर दिया, तो फिर ये पीटीआई जो उसकी एंटी स्टेटस को जो प्रीवियस पोजिशन थी उस पर चली गई, यानी सुन्नी तात कौंसिल खत्म हो गया, चूंकि ये तो उसके बाद की क्रिएशन थी, तो नोटिफिकेशन के बाद ये जो अब नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, सेट असाइड हो गया, तो वो प्रीवियस पोजीशन में जब पीटीआई थी तो पीटीआई के को ही उन्होंने सीटें दे दी। अब ये हुकूमत की तरफ से कहना, हुकूमत की तरफ से ये कहना कि जी सुन्नी तात गया था पीटीआई तो गई नहीं थी, तो मेरे ख्याल में ये उनका कहना गलत है। इसलिए गलत है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए थे कि जी हमारी जजमेंट को इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया है, उसको भी दुरुस्त कर दिया, लाइक जुल्फकार अली भुट्टो केस जैसे, उसको आर्टिकल 186 के तहत 40 सालों बाद उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद है, उनको आर्टिकल 10 नेम नहीं दिया गया, तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब इसी तरह ये 187 सब आर्टिकल 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुना, जिसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि सब्सटेंशियल जस्टिस करना है, कंप्लीट जस्टिस करना है, तो वो दोनों जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था उन्होंने सेट साइड कर दिया, और यही ऑब्वियस था। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी एट ऑल। अब जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट की जा रही है हुकूमत की तरफ से, बजाय उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करते, तो उन्होंने आप रिव्यू की तरफ भी जाना, मतलब उन्होंने कहा कि जी हम चैलेंज करेंगे, तो रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो इस तरह से है कि कोई फैसले के ऊपर, कोई जजमेंट के ऊपर कोई टेपिकली ग्राफिकली मैकेनिकली कोई मिस्टेक हो तो सिर्फ उसको रिव्यू किया जा सकता है। इंटायरली 190 के एंगल पे जाके आप उसकी जो रीजन था उसकी डिसीजन उसको आप चैलेंज नहीं कर, उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रिव्यू के अंदर वही पेंच होगा, तो वही जजेस जिन्होंने 3-4 दिन पहले ये जजमेंट दी, क्या वो रिव्यू में जाके बदल जाएंगे? तो ये मेरा ख्याल है ये हुकूमत का अपना ऑप्शन है, वो कर रहे, लेकिन मेरे जैसे नालायक बंदे से अगर पूछे तो मैं अगर एडवाइस करूं तो मैं कभी भी ना कहूं, क्योंकि उसमें सुखी के ज्यादा चांसेज है बजाय कामयाबी के।
बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत माफी की ख्वाहिश करूं कि मैंने आपको लेट नाइट तंग किया, मगर आप ये समझिएगा कि जब आप मरीज के पास हैं और करीब हैं तो कैफियत मुख्तलिफ है। आई जस्ट ट्राई टू फाइंड द फैक्ट्स, जिसकी वजह से आप जैसे अजीम लोगों को मैं बॉदर करती होती हूं। सर आपने ये कहा कि उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, और जनाब मुशाहिद हुसैन साहब ने भी कहा है कि भाई इनको होश के नाखून लेना चाहिए, दे आर गोइंग इन एब्सोल्यूट रॉन्ग डायरेक्शन, मगर अब वो ये समझते हैं, हुक्मरान जमात ये महसूस कर रही है, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल ये कहा था कि पीटीआई को दहशतगर्द जमात करने के हवाले से हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। मरियम नवाज साहिबा ने अलल ऐलान ये बात कही है कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, जिसमें उन्होंने उनके बॉम्ब्स का भी तस्करा किया है, उनके घर में भी, हालांकि दे कुडंट फाइंड एनीथिंग इन इमरान खान होम। और वहां दूसरी तरफ जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि अजमे इस्तेहकाम का जो मिशन है दैट इज दहशतगर्दों को एलिमिनेट करना, दैट इज नॉट आर्मीज रिक्वायरमेंट, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। ایک طرف ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ایک ایلیمینیشن آف دہشت گردوں کے لیے عزم استحکام کے پروگرام کو لانچ کیا گیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ناؤ دے آر ورکنگ ٹو ڈکلیئر پی ٹی آئی ایز اے دہشت گرد جماعت، اور اس سے پہلے تاریخ میں ہے چند ایک پارٹیز پہ پابندی لگی تھی، تو یہ اپنی دشمنی میں آر یو گوئنگ ٹو گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ؟
دیکھیں جو آرٹیکل 17 ہے اس کا سب آرٹیکل 2 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، اور 212 سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا جس کے تحت کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پری ریکوزیشنز ہے. ایک یہ کہ وہ پارٹی فارن فنڈیڈ ہو، ٹیررزم میں انوالو ہو، سوورینٹی انٹیگریٹی اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہو، اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک گزٹ نوٹیفکیشن کرے گی اور 15 دن کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیڈرل گورنمنٹ بھیجے گی، اور پھر سپریم کورٹ دونوں پارٹیوں کو سنے گی، اور ان سپورٹ آف دیٹ اگر کوئی ایسا میٹیریل اویلیبل ہو اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو یس میں آنسر آئے گا، اور اگر نہیں تو اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گی. ماضی میں جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی ایک موو چلی تھی، اور پھر ایک نیب تھا نیشنل عوامی پارٹی وہ تھی، اور اس کے خلاف ایک ریفرنس گیا تھا، صرف اس میں سپریم کورٹ نے بین کرنے کا حکم کیا تھا، جو کہ بعد میں ایک دوسرے نام سے اے این پی نام سے رجسٹرڈ ہوگی اور وہ ورکنگ کرتی رہی. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے، وہ پی ایل ڈی 1976 سپریم کورٹ پیج نمبر 57 اسلامک ریپبلک آف پاکستان ورسز ولی خان، تو اس میں انہوں نے بین کیا تھا. اور میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اگر میدان میں ہی مقابلہ کرنا چاہیے، اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرتے ہیں یا ناک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کوئی اچھی نہیں ہے، اس سے ملک کے اندر جو ڈیسٹیبلٹی ہے وہ زیادہ اس کو ہوا ملے گی، پھر لالسنس بھی ہوگی، اور جس پارٹی نے اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں لی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، آپ اس کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جس نے ایک دفعہ اس ملک اوپر رول بھی کیا. تو میں تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بین کرنے کے بالکل قطعی طور پہ حق میں نہیں ہوں. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں اگر یہ ساری صورتحال تھی تو وائی دے ور کیپٹ مومنٹ سائلنٹ اینڈ دے ہیو ناٹ مووڈ اینی سچ دے ہیو ناٹ ٹیکن اینی اسٹیپ ٹو ورڈس ٹو بین دی پولیٹیکل پارٹی، کوئی ایسا کنکریٹ اسٹیپ نہیں لیا گیا. تو آئی تھنک سو دس از دا ریئیکشن آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ کنٹمپٹ کے زمرے میں بھی آئے گا، چونکہ سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کے مینڈیٹ کو فرسٹیج کریں گے تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اس کی کنٹمپٹ بھی موو کر سکتا ہے.
بہت شکریہ جناب صدر ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ کے جناب ریاست علی آزاد صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں. سر ابھی ابھی بلکہ کہ یہ گورنمنٹ میرا خیال ہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتی جا رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے. یقیناً پاکستان کی سینٹ میں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں، ویل اینڈ گڈ، نہیں دینا چاہتے تو آپ کی مرضی. پاکستان کے 3-1 سینیٹرز ہیں جنہوں نے کہا وہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں، اور وہ یقیناً عسکری پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں تمام کی تمام ڈوریاں ہیں. ظاہر ہے ہر گورنمنٹ نے یہ ہوا کہ الٹیمیٹ فیصلے یا وہ کرواتے ہیں پولیٹیشنز کو، اپنی پاور یا اپنی پوزیشن عزیز ہوتی ہے. تو آر دے ناٹ ٹیکنگ این ایکشن کہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ملک میں از دیر اینی چانس کہ اگر یہی صورتحال رہی اور یہ سیاستدان بے لگام رہے تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے؟
ایمرجنسی کے لیے تو حالات واقعات نہیں ہیں، وہ اس کے بنا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 232 ہے اس کے اندر ہے کہ اگر صوبائی حکومت فیل ہو جائے اور وہ اپنی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرے یا پاکستان کے کسی حصے میں وہ یہ کہیں کہ جی مطلب حالات جو ہے وہ اس صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے तो फिर जो है इमरजेंसी वहां पे लगाई जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे हालात नहीं है। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान अपनी मर्जी से लगाते हैं तो फिर उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर उस को रेफरेंस को उस प्रोसेस को पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल लेनी होती है। तो मेरा ख्याल है ऐसे हालात नहीं है, और अगर ऐसी सिचुएशन हो इमरजेंसी लगा दी जाए किसी सूबे के अंदर तो वहां पे जो गवर्नर होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना वो तमाम अख्तियारात इस्तेमाल करता है। तो ऐसे चांस नहीं है। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी खराब है इस वक्त। पाकिस्तान के हालात लॉलेसनेस की भी बड़ी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये है कि सियासतदानों को बहुत अकल के साथ बैठ के सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये काम सियासत करना सियासतदानों का काम है, और ये तभी हो सकता है जब ये आपस में बैठेंगे। अगर ये एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसी तरह जैसी सिचुएशन जा रही है इसी तरह मुल्क के हालात भी रहेंगे, और इसी तरह इस मुल्क की सियासत और इसी तरह मुल्क की कानूनी और जो आईनी सूरत हाल है वो भी ऐसे ही चलेगी।
मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है सर, कि एकदम से फिर वेव आई है सियासतदानों की जो खासतौर पर पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी मुझे पता चला है कि मुजफ्फराबाद में जनाब जमशेद दस्ती साहब की गिरफ्तारी के लिए भी उनके घर पे छापा मारा गया। और डू यू थिंक के इज इट वाइज, और कौन इनको ये मशवरे दे रहा है इस वक्त की हुक्मरान जमात को?
देखिए ये तो टिट फॉर टैट वाला मामला पाकिस्तान में जारी है। आज ये कर रहे हैं कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, कल को ये करेंगे और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कोई आज ये मजलूम पीटीआई वाले बने हुए, कल को मुस्लिम लीग नून मजलूम बनी होगी, तो ये सूरत हाल ऐसी चलेगी। और हम हर दौर में हर उस वक्त में मजलूम के साथ हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ ज्यादती होगी। तो सच्ची बात है, मैं तो जाती तौर पर उन्हीं के साथ खड़ा हूँ।
मैं सर आपके से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप वकला के पास कानून की मुकम्मल तशरीह है, आपको चाहिए कि मजलूम इंसानों की नहीं मजलूम पाकिस्तान का आप लोग ख्याल करें। इस तरह नहीं चैलेंज कि आप इन तमाम के तमाम पॉलिटिशियंस के लिए कि दे आर डूइंग रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग, कि अगर कल पीटीआई ने बेशक आर्मी के कहने पे जो कुछ भी किया, चाहे फायज ईसा के अगेंस्ट केस फाइल हुआ, चाहे बुजदार साहब को वहां रखा गया, या जो कुछ भी हुआ, जिन जिन जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुए, जिन जिन वकला के ऊपर अटैक हुए, आज वही काम मुस्लिम लीग नून कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी खामोश है, वो कहते हैं हमसे तो मुशावरत नहीं की गई। आप लोग क्यों स्टैंड नहीं लेते मुल्क के लिए रादर देन हेल्पिंग समबडी हु?
हमने स्टैंड लिया हुआ है, हम तो आईन और कानून की बात करते हैं, हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम इंटरप्रिटेशन, आपने कहा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती, हाई कोर्ट करती कवानीन के, हम तो उनको असिस्ट करते हैं। देखिए अख्तियार वाला बंदा फैसले करता है, हम तो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हम चादर और चार दीवारी के तकद्दस की पामाली के खिलाफ है, हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ है, हम आईन और कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ है, जो हमारे मुतलका ड्यूटी हम कर रहे हैं। बाकी सारी जिम्मेदारी होली सोली सियासतदानों पे है। अगर आज जो इकतदार में बैठे हैं कल वो अपोजिशन में होंगे, ये उनको ठोक रहे हैं तो कल वो इनको ठोकेंगे। इसके अलावा कोई इसका
सफर तो मेरा मुल्क करेगा ना, सफर तो पाकिस्तान करेगा। दिस शुड एंड एट सम प्लेस।
हम तो इसीलिए हम आवाज बुलंद करते हैं क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। अगर मुल्क को नुकसान होता है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक या उस मुल्क का कोई ना नेक नामी में कोई आता है, तो सच्ची बात हमें तो बड़ा दुख लगता है, हमारा तो दिल खून के आंसू होता है। इसीलिए हम भी बात करते हैं, अदरवाइज हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, अपना टाइम निकाल के तो इस पे बात भी करते हैं। हम अपना काम अपना टाइम किसी और जगह लगाएं जहाँ से हम पैसे कमाएं, लेकिन सच्ची बात है मुल्क का दर्द है तो हम इस पे बात भी करते हैं और हर जगह पे खड़े भी होते हैं और स्टैंड भी लेते हैं। इस मुल्क को लोगों ने मजाक बना दिया, लोग लूट लाट के सारे पैसे जो भी आता है लूटता है और लेके मुल्क से बाहर चला जाता है। पाकिस्तान के जो गरीब लोग जिनके पास जो गांव में रहते उनके पास शहर आने का किराया नहीं है, वो मुल्क से बाहर जाने का सोच भी सकते। महंगाई है, बर्बादी है, जो कुछ है वो गरीब लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जिनके पास ये मनी लॉन्ड्रिंग या लूट मार का वसीला हुकूमतें हैं, वो लोग उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, वो खुद भी बाहर आते जाते हैं, उनके लिए महंगाई शिकाई कोई इशू ही नहीं बनता। हम जैसे जो सफेद पोश लोग हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है जिसको हम फेस कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया सर। जनाब रियासत अली आजाद साहब, मैं ऑनेस्ट टू गॉड बाज़ औक़ात लफाजी होती है, आई मीन इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल हम तमाम का कंसर्न है और हमारा कंसर्न हमारा मुल्क है। बहुत एहसानमंद हूँ आपकी कि आप मेरे साथ शामिल हुए और मैं यहाँ पे हर पाकिस्तानी को, आप किस मुल्क में हैं, अगर आप डोंट डिफेम पाकिस्तान, अगर आपने डिफेम करना है तो अपने रिश्तेदारों को बैक होम कॉल करें, जितने चोर उचक्के हैं, वी डोंट हैव एनी पर्सनल एनिमोसिटीज। अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया तो आप उनकी जिंदगियों को तंग करें, उनकी जिंदगियों को तंग करें। सर इन्होंने $295 मिलियन MNAs को हुक्मरान जमात ने दिया है, वेयर एज दे आर नॉट अलाउड टू, बाकायदा प्लानिंग होती है कि पैसा कहां खर्च करना है, इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं बैठा हुआ कि आप MNAs को देते हैं वो अपना कमीशन 10-10% लेते हैं, अपने अपने वाकफकारों को ठेके देते हैं, तो मुल्क का काम 10% होता है, 90% जो है वो लीक हो जाता है, कोई चैलेंज कर सकता है इसको?
यही बात है, देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां भी बनी हुई है, ऑडिटर जनरल भी है जो इन सबको एक साफ भी करते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे सारा निजाम ही ऊपर से नीचे तक जो है ना वो ठीक नहीं चल रहा। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई कि लोग तंग आमद बजंग आमद उसकी तरफ जा रहे हैं और इस मुल्क के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला खैर फरमाए, कोई एडवर्स सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, लोग अब बहुत तंग आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो तनख्वाहें भी अपनी पार्लियामेंटेरियन बढ़ाते हैं, वो अपने अलाउंसेज भी बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो पेंशनर है उनकी अगर 2 रुपए या 5% बढ़ा दे तो वो मौत लगती है, अपनी अजाशी के लिए अपने उसके लिए जितने पैसे मर्जी बढ़ाते रहे। उलाजमी का आप हालत देखे तो उनकी तनख्वाहें, उनके बच्चों की फीसें नहीं पूरी होती, वो बच्चों को खिला नहीं सकते, वो बिल बिजली के नहीं अदा कर सकते। तो इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक क्लास है जो सिर्फ उसको अयाशी कर रही, बाकी सब लोग सफर कर रहे हैं अंग्रेजी वाला।
वो जो सफर कर रहे हैं, डू यू थिंक के श्रीलंका वाली सूरत हाल यहाँ हो सकती है, क्योंकि जितने लुटेरे हैं उनकी फैक्ट्रियां हैं उनकी इंडस्ट्रियां हैं। इट्स नॉट कि आई वांट टू गो अगेंस्ट पाकिस्तान, आई वांट टू गो अगेंस्ट एवरी करप्ट पर्सन, आई वांट पीपल टू कन्फाइन देम इनटू देयर होम्स, डोंट लेट देम गो आउट ऑफ देयर होम्स, डोंट गिव देम रिस्पेक्ट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट।
पाकिस्तान एंड एज पर सर्कमस्टांसेज दैट देयर आर वाइब्स एंड देयर इज अ वाइब्स ऑफ चेंज इन अ कंट्री, दैट द सिस्टम विच इज प्रिवेलिंग नाउ इन द कंट्री दैट हैज entirely become a very corrupt and there is no chance at all that you can rectify, you can make the things as per the mandate of the constitution, laws, because rule of law that is missing, supremacy of constitution that is missing. You can refer a number of examples like that it was clear cut mentioned in the constitution that after the completion of the tenure that you have to conduct the election, fresh election within 90 days, but no one has bothered to conduct the election and the that was delay so this is the situation now which is going on, and in prevailing circumstances we are very fed up from the government, parliament and the implementation of law, whatever that you can say.
God bless you sir, God bless you. May Allah Ta'ala aapko mere Pakistan ka hami unasir rahe. I think there was a time ki hum kamzor ke saath hua karte, but this is the time to stand with Pakistan rather than standing with these corrupt people, industrialists jinke paas factories hain. Even Pakistan mein doodh ka karobar bhi shuru kiya to apne ke liye shuru kar liya, aapne solar panels leke aaye to bhi aap hi paisa bana rahe hain, to gareeb aadmi kya kare, wo mar jaye. Magar ab ye aap logon ko khud uthna hoga, please get together against the corrupts, not against the state. Love you all. Aapka bahut shukriya, you are a great man. थैंक यू वेरी मच, और यही आपकी मोहब्बत है वतन के लिए। अल्लाह हाफिज।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-7241-647-769-0241।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। $12 ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਟੈਕਸ ਕੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मोईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मोईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक क्यू थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक क्यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
आपके जहन में कुछ क्रिकेट चल रहा है? दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं आपके शहर ब्रैम्पटन में। बाबर आजम, डेविड वार्नर, क्रिस लीन, शाहीन अफरीदी, शकीबुल हसन और मजीद सुपरस्टार को देखिए एक्शन में जुलाई 25 से 11 अगस्त तक TD क्रिकेट अरीना ब्रैम्पटन में। बुक योर टिकट्स नाउ एट tickets.gt20.ca एंड डू नॉट मिस आउट नॉर्थ अमेरिकाज बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट।
10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਆਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾ ਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com। ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 437-218-8734, chandnihalls.ca।
यू ही चलना चल रही यूं ही चलना चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल होलसेल रेट पाकिस्तान इंडिया और मिडल ईस्ट एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस अफोर्डेबल इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स
Airwing Travel and